अब इसके बाद आयत नंबर 22 से आगे जो हिस्सा शुरू हो रहा है, थोड़ा सा इसका तारुफ देकर आपको शुरू कराती हूँ। इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये अहकाम अशरा हैं, 10 कमांडमेंट्स। पीछे आपको लिखाया था ना सूरह बकरा में, और सूरह अलनाम में भी आता है एक वसीयतनामा नबी सल्लम का। तो पीछे जो बात हुई थी वो बनी इसराइल के टैक्स से थी, यहाँ उम्मत मुस्लिमा के लिए थी। कहते हैं कि यह अहकाम अशरा का कुरानी वर्जन है। शिर्क से बात शुरू होगी, माँ बाप के हकूक के बाद बाकी सारी चीज़ों को लेके जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ सबको इकट्ठा पढ़कर फिर इसको दीन के नाते से हम देख लें कि हमारी ज़िंदगी में ये सब कुछ क्या है। और अल्लाह ताला ने ये जो आखिरी बात की थी ना कि कई फफद्दल नबादहुम अला आबादिन, इस पे गौर करते हुए इस हिस्से को सुनिएगा, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया में फजीलतें दी हैं। आज मेरे आपके पास पूरी मोहलत मौजूद है, किस नेकी को बढ़ा लूं, किस गुना को कम कर लूं। आज मेरे आपके लिए अल्लाह ताला ने शिर्क से बचने के भी रास्ते रखे हुए, माँ बाप की खिदमत और उनकी दुआएं लेने के भी रखे, और दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं। तो आइए ज़रा सा इन चीज़ों को पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तजल मा अल्लाहि इलाहन आहर, तो अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बना, वरना मुलामत ज़दार बेयारो मददगार बैठा रहेगा। यहाँ देखिए सिर्फ एक आयत है शिर्क पे, हालांकि पूरा कुरान शिर्क की बेखुनी करता है, क्योंकि यहाँ आगे ज्यादा बात हो रही है मामलात पे, और आज हम इसी पे गौर करेंगे। मामलात बहुत सारों को मस्जिद की नेकी नजर आती है, खाना काबा में जाने की नेकी नजर आती है, मस्जिद नबवी की 40 नमाजों की नेकियां याद रहती हैं, पर जो नेकियां भूले होते हैं अक्सर लोग, वो मामलात की हैं, खराबियां उसमें। हम भाग भाग के इन मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन हम भाग भाग के रिश्तेदारों और माँ बाप की खिदमत और उनकी टेक केयर के लिए नहीं जाते। इसीलिए देखिएगा आप हुकूकुल इबाद में से पहली चीज, वकदा रब्बुका ला ताबुदु इल्ला इय्याह, तेरे रब ने फैसला कर लिया कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ उसकी, वालदैन के साथ नेक सलूक करो, अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो इन्हें उफ तक ना कहो। उफ, और सहाबी कहते हैं कि अगर उफ से भी छोटा कोई लफ्ज होता, हजरत अली का कौल है कि अगर उफ से भी छोटा कोई जुमला होता ना, कलमा होता, तो अल्लाह ताला वो बयान करते। क्यों? आप देखिए, उफ कहते हैं तुम्हारी उफ से माँ बाप के दिल का चिराग बुझ जाएगा, जैसे फूक मारे तो मोमबत्ती बुझ जाती है ना, इस तरह माँ बाप को तो औलाद की मुंह से उफ ही बड़ा बुरा लगता है, कहाँ माँ बाप को क्या कुछ बड़ी बातें लोग सुनाने लग जाएं। तो याद रखिए कि माँ बाप से बात करने का सलीका सिखाया जा रहा है, और ना इन्हें झिड़क कर जवाब दो। ठीक है, तुम्हें बोलना आ गया, तुम्हारी आवाज़ बड़ी ऊंची है, पर अब उनको झिड़को तो नहीं। माँ बाप को टॉलरेट नहीं करना, उनको ऑनर देना, उनकी ऐसे खिदमत करनी है कि उनको फख्र लगे कि आपने हमें अपनी खिदमत करने का मौका देकर हम पे एहसान किया है। बल्कि इनसे एहतराम के साथ बात करो, और नरमी और रहम के साथ इनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो, सब मिलके पढ़ें। यही हमारी आज के पारे की दुआ भी है, कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। पढ़िए सब मिलके। दुआ किया करो कि परवरदिगार इन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने रहम और शफकत के साथ मुझे बचपन में पाला था। इससे खूबसूरत दुआ माँ बाप के लिए कोई नहीं है। कुरान सुन्नत में बहुत सारी और भी दुआएं हैं, लेकिन इस दुआ के बारे में तो यहाँ तक आपने अपने सहाबी को कहा जिसने आके आपसे सवाल किया कि अल्लाह के नबी, मेरे माँ या बाप में से जो भी था इस हाल में फौत हो गए कि मुझसे नाराज थे। होता है, औलाद को नहीं पता होता अपने वक्त पे, मस्ती थी, माँ बाप चले गए, तौबा का मौका नहीं मिला, माफ़ी नहीं मांगी। अब मुझे एहसास है कि मैंने अपने माँ बाप को तकलीफ दी, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, फरमाया कि उनके लिए ये दुआ करो। और उसी पे अगली आयत भी है, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है, अगर तुम साले बन करो हो तो वैसे ही लोगों के लिए दरगुजर करने वाला है, और जो अपने कसूर पर शर्मिंदा होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आए। तो यहाँ पे माँ बाप की बात थोड़ी सी समझ लीजिए कि माँ बाप हकीकत में दुनिया में हमारे आने का जरिया बनते हैं, और ये वो रिश्ता है कि जो दुनिया से जाने के बाद भी नहीं कटता। अब सवाल पैदा होता है कि हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा मामला कैसे करें? क्या आपके मेरे लिए अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का कोई मौका है, बहुत सारे मौके हैं। आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं, हम नहीं करते। बस वो लोग कहते हैं हम उनका ख्याल तो रख रहे हैं, हमने उनको मासी दी हुई है, फुल टाइम मेड रखी हुई है, तो अगर बचपन में वो आपको मेड दे देते, प्यार ना करते, वक्त ना देते, तो क्या करते आपके मेरे लिए। ये चीज़ सोचने की है। तो चंद चीज़ें नोट कीजिएगा क्विकली कि माँ बाप के साथ प्रैक्टिकली एहसान कैसे किया जाए। पहली बात है, जब अपने माँ बाप के पास जाएं अपना फ़ोन बंद कर दें। अब जिनके माँ बाप खुद नहीं है इधर दुनिया में, इधर नहीं है, तो सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी नहीं है ना, तो खानदान का कोई बुजुर्ग, आपके नेबर में रहने वाली कोई आंटी जी, कोई खाला जी, बड़ों का अदब कीजिए, अल्लाह आपको बड़ी इज्जत देगा, बाअदब बानसीब। फिर दूसरी बात क्या है कि जो वो बात आपसे कहेंगे गौर से सुनिए उसको। फिर तीसरी बात यह है कि वो आपको किसी मामले में कोई राय दें उसको कबूल कीजिए। फिर इसके बाद बातों के दौरान उनको भी शामिल कीजिए। बाद जब माँ बाप को एक फालतू पुर्जा समझ कर घर में छोड़ दिया जाता है, घरेलू मशवरों में उनको शामिल कीजिए। फिर दूसरी बात है, जब माँ बाप को देखें तो मोहब्बत से देखें। आपको तो माँ बाप को देखने से हज का सवाब मिलता है, खास तौर पे माँ का लफ्ज आता है, प्यार की शफकत की बात, और घूरें, आपको तो अकल ही नहीं, आपको तो समझ ही नहीं कैसा आज कल्चर आप देखिए दुनिया में दिखाया जा रहा है। फिर इसके बाद आप देखिए कि उनकी तारीफ करें, कभी उनके सामने बैठकर भी करें, मामा आपको याद आप ये करती थी, अब्बू से बात करें, जिससे भी बात करनी मुश्किल लगती है करके देखें। फिर आप देखिए जब कोई आपको खुशी की खबर मिले अपने माँ बाप से शेयर करें, बुरी खबर है कोई आपकी अपनी जाती जिंदगी की या कोई बाहर की, उसको उनसे ना शेयर करें। इस उम्र में आपने उनको बुरी खबरें सुना के करना भी क्या है, रोएंगे खपेंगे और बीमार होंगे, दुखी होंगे। फिर इसी तरह माँ बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, उनके साथ प्यार से मिलिए, बल्कि अगर अपने माँ बाप नहीं है तो माओं की सहेलियां, बापों के दोस्त, उनके साथ इंसान को एहसान का मामला करना चाहिए। फिर इसी तरह से जो माजी से लेकर उन्होंने आज तक आपके साथ अच्छे मामले किए वो कभी कभी उनके साथ शेयर करें, आपने उस ईद पे मुझे ये कपड़े बना कर दिए थे, आपने मेरी वो ख्वाहिश पूरी की थी, ये किया था, आप देखेंगे इससे वो बहुत खुश होंगे। फिर एक और एहसान का तरीका क्या है कि अगर वो आपको एक बार 10वीं दफा के बाद अब 11वीं दफा भी सुनाने लग गए हैं, अक्सर बड़ों का यही काम होता है, चुपके से सुन लीजिए आपका क्या जाता है। अगर उन्होंने 10 दफा सुना दिया तो क्या हुआ, आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि एक बूढ़ा बुजुर्ग था, तो बेटा भी था, तो दोनों बाहर बाग में बैठे हुए थे, बेटा अखबार पढ़ रहा था, बाप बूढ़ा बैठा, बेटा ये क्या का चिड़िया है, अच्छा फिर तो बेटा ये क्या चिड़िया है, तीसरी को दफा बोली तो बच्चा जरा शोर कर चुका कि अब्बा कह नहीं दिया ये चिड़िया है। उसके बाद अब्बा जी अंदर गए, पुराना संदूक खोला, उसमें एक पुरानी कापी निकाली, उसमें हाथ से कुछ लिखा हुआ था, कहा बेटा इधर आ इसको पढ़, ये क्या है, कहा ये क्या है, पुरानी कापी एक सफ़े पे लिखा है, अब्बा ये क्या है, तो आगे जवाब में लिखा हुआ चिड़िया है, अब्बा ये क्या चिड़िया है, कहा ये क्या है, कहा तुझे याद नहीं है, तू बहुत छोटा था, मैं तुझे एक दफ़ा बाग में लेकर बैठा, सामने चिड़िया थी, तूने प्यार से मुझे कहा बाबा ये क्या है, तो मैंने कहा बेटा ये चिड़िया है, तूने फिर पूछा, तेरा ये बताना मुझे इतना अच्छा लगा, तो जितनी दफा बोल रहा था मैंने उसको कॉपी पे लिख लिया, और आज मैं एक बात बार बार कहता हूं तो तुझे मेरे पे गुस्सा आता है, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। फिर इसी तरह से आप देखिए कोई माजी की तल्ख याद है, कभी उन्होंने डांटा, कभी गुस्सा किया, आप उनके साथ शेयर ना कीजिए, इसलिए कि इससे फायदा नहीं होगा। फिर इसी तरह से याद रखिए कि जब माँ बाप मौजूद हो ना सामने, कोशिश करें कि उन्हीं के मुतल्लिक बातें करें। फिर उसके बाद देखिए उनके सामने बैठने का तरीका, वक्फिज लहुमा जनाह जुल्ली मिन रहमा, इस तरह झुके जैसे परिंदा उड़ने से पहले पर समेटता है, क्योंकि जिनको उड़ना होता है ना वो माँ बाप के सामने झुकते हैं। याद रखिए माँ बाप को छोड़कर सब कुछ मिल सकता है आपको, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, स्टेटस भी मिलेगा, माल भी मिलेगा, जन्नत नहीं मिलेगी। फिर एक और बात याद रखिए कि माँ बाप का ख्याल तो करना है, उनकी तरबियत नहीं करनी आपने, सॉरी ये उनका काम था, आप अपने माँ बाप को बदल नहीं सकते, वो जो बनने थे वो बन चुके हैं, उन्होंने जो करना था करें, आपने मैंने करना क्या है, उनके साथ अच्छे तरीके से रहना है। फिर आप देखिए उनकी दवाइयों का ख्याल रखना, उनको मौसम के अच्छे कपड़े देना, बस लोग कहते हैं अभी इनको क्या जरूरत है, लो अब अम्मी ने तो दूसरों को देना है, नहीं आप उनको पैसे दीजिए, वो सदके में देंगे, इधर उधर करेंगे, इस्तेमाल आपको ही सवाब मिलेगा। फिर उनसे शिकवे ना करें, शिकायतें ना करें, बास औरतें कहती हैं आपने तो हमारी अच्छी जगह शादी नहीं की, ऐसे ही मुझे फेंक दिया, क्या मर्द मेरे लिए ढूंढ लिया, ऐसी हर चीज से बच के रहें, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जब आप उनकी थोड़ी सी बातें बर्दाश्त करेंगे ना उनको फायदा होगा। आप देखिए कि कई ऐसी चीजें हैं कि जिसको आप खुद से नहीं समझ सकते जब तक कि आपके अपने दिल से ना निकले। और अगर किसी को महसूस होता है ना कि नहीं है फितरी तौर पर मेरे दिल में माँ या बाप की मोहब्बत, मांगिए रब्बे रहम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। कभी हमें माँ से ज्यादा प्यार होता है बाप से नहीं होता, कभी बाप से होता है माँ से नहीं होता, तो कहिए रब्बे रहम हुमा, ए अल्लाह मुझे अपने माँ बाप की मोहब्बत दे दे। फिर इसी तरह से और बहुत कुछ है, मैंने 35 पॉइंट जमा किए हुए थे, आपको इंशाल्लाह शीट के साथ भिजवा देते हैं और आप उसको चेकलिस्ट के तौर पर अपने लिए भी रख लीजिए कि क्या मैंने अपने माँ बाप का ये हक दिया। चलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, हाथ बांधने का तरीका, बस जब हम यूँ खड़े बैठ जाते हैं, अब देखिए ये कितना मायूब तरीका है। बाद लोग सीने पे हाथ बांधते हैं ऐसे जैसे किसी से हिसाब लेने आए हुए हैं, किसी से कुछ पैसे निकलवाने आए हैं। ये सब कुछ हमारा दीन सिखाता है, उनको खिलाइए, उनको अपने हाथ से खिलाइए। एक शख्स ने अपनी सारी रात माँ बाप के लिए दूध का प्याला रखा, अल्लाह ने इस अमल को इतना कबूल किया कि गार में से निकलने का रास्ता बना दिया। सबने वो हदीस पढ़ी हुई है किस तरह से वो लोग फंसे थे। तो इंशाल्लाह आप और मैं जितनी कोशिश करेंगे अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करेगा। कभी उनसे गलती हो जाए हंसे नहीं, उनकी बात को बदले नहीं, आप उनको मिलने जाएं, एक खास वक्त रखें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर उनकी कोई बुराई आपको पता लग जाए तो उसको दूसरों के साथ शेयर ना करें। आइए शऊर के साथ पढ़ते हैं रब्बे रहम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप पे अपनी रहमतें फरमा। फिर उसके बाद अगला हक, रिश्तेदारों को इनका हक दो और मिस्कीन और मुसाफिर को इसका हक दो। देखिए इस्लाम कैसे प्यारे तरीके से हकूक दिलाता है। अगर हमने भी अपनी औलादों को इस किताब से जोड़ा है तो देखिएगा वो आपको मिलेगा। लोग कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, मैं कहती हूँ आप उनको अल्लाह की बात सुना दें। वही औलादें अपने माँ बाप की भी इज्जत करती हैं जिनकी जिंदगी में इस्लाम आता है। फिर एक नेगेटिविटी से रोका गया और वो क्या, फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं, शैतान अपने रब का ना शुक्रा है। क्या होती है फजूल खर्ची? एक है इसराफ और एक है तबजीर। एक है हराम पे एक रुपया भी खर्च करना मना है, हराम पे एक रुपया भी खर्च करना हराम है। और एक है हलाल है, कपड़े हैं, जूते हैं, खाना है, घर की जरूरत की चीजें हैं, उसमें हद से ना बढ़िए। जो खाना है वो खरीदिए, जो पहनना है वो लीजिए, जो इस्तेमाल करें वो रखिए। और आप जरा इसे एक जुमले पे जरा 3 सेकंड तो गौर करें, कोई पसंद आ जाए चीज और कीमत उसकी है हजारों नहीं लाखों में, और किस लिए कमाते हैं? एक क्राइटेरियन बड़ा खूबसूरत है, मैंने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से सीखा हुआ है, हर साल की तरह इस दफा आपको भी सुना देती हूँ वाक्या, तो आपके मेरे लिए एक चेकलिस्ट बनेगी। अपनी जात पे किस दिल से खर्च करती हूँ और अल्लाह के रास्तों में किस दीन पे या दूसरों पे। नबी सल्लम का दौर था, एक हाजतमंद आपके पास आता है, आपके पास इत्तफाकन कुछ नहीं था, आप हमेशा जब नेकी खुद नहीं कर पाते थे ना तो दूसरे को माइल कर देते थे। आपने कहा वो उधर चले जाओ, उस्मान का घर है, उससे जाकर मुतालबा करो, मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें कुछ देंगे। इत्तफाक देखिए कि जो ही वो शख्स उनके घर के पास गया तो घर के अंदर से झगड़े की आवाज आ रही है, और झगड़ा भी किस बात पे कि अगर एक चिराग से काम चल सकता था तो तूने दो क्यों चलाए। हजरत उस्मान इस बात पे बीवी से नाराज हो रहे हैं। वो शख्स वापस आ गया, क्या हुआ, मांगा नहीं? कहा नहीं अल्लाह के नबी, मुझे नहीं लगता वो मुझे देंगे। यदि जो इतना कंजूस शख्स है कि एक फालतू चिराग जलने पे परेशान है तो वो मुझे क्या देगा। कहा नहीं जा तू मांग। खैर गए, नॉक कर दिया, बाहर आए, इस तरह जरूरतमंद हूँ अल्लाह के नबी ने भेजा। अच्छा ठहरो, अंदर गए, थैली पकड़ी हुई अशरफियों की हाथ में दे दी। अब उस शख्स से नहीं रखा गया, कहा एक बात तो बताएं, अभी आप एक फालतू चिराग जलाने पे नाराज हो रहे थे और अब मैंने मांगा तो आपने पूरी थैली पकड़ा दी। कहा वो जो चिराग था ना वो मेरे नाम पे पड़ता, उसका हिसाब मैंने देना था, ये मैं तुझे अल्लाह के लिए दे रहा हूँ। बस ये रखिए मेयार, एक यूरो अपनी जात पे खर्च करने से पहले कम अज कम 3 या 10 दफा सोचिए, ले लूँ जरूरत है, ना लिया तो क्या क़यामत आ जाएगी, ले भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, गुजारा हो सकता है, घर में है कुछ, आलू नहीं है टमाटर डालूँ, टमाटर नहीं है दही डालूँ, ये ना कर लूँ, ये ना पहनूँ, वो कर लूँ, कर लूँ। यकीन करें कि आपके मेरे पास इतना पैसा बच जाएगा कि अगला हक जो आ रहा है वो देखिए दोनों जुड़े हुए हैं। जब हम अपनी जात पे ज़्यादा लगाते हैं हमारे पास रिश्तेदारों के लिए रहता ही नहीं है, और आपकी ज़रूरतें कम, देखिए फिर कैसे रिश्तेदारों को देते हैं। और मज़े की बात आपको बताऊँ, अंदर की बात है ये, पते की बात कह लें, जितना आप अपनी जात पे कम लगाएंगे उतना अल्लाह आपकी जात पे ज्यादा लगाएगा। आपके पास हर वो चीज होगी जो उनके पास भी नहीं होती, जो ख्वाहिशें रखते हैं, तमन्नाएं करते हैं, पर आपके दिल में उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि आप उस पैसे को अल्लाह के रस्तों में लगाएं, अल्लाह के बंदों के साथ लगाएं, गरीब रिश्तेदारों को दें, फकीरों को दें। बाज़ दफ़ा हमारा एक अरमान होता है और किसी की वो मजबूरी होती है, किसी के घर का बिल बंद है, किसी की बिजली कटने की है, और आप उस जोड़े पे लगाकर उसको कहाँ देंगे। तो कम अज कम कोई एक कुर्बानी जरूर दें। ईद का जोड़ा सोचा हुआ था 10,000 का, कट डाउन कीजिए, जाइए किसी के गरीब के घर में राशन डाल दें, पूरा महीना खाएगा शवाल का और आपको दुआ देगा। इसीलिए फरमाया, यानी हाजतमंद रिश्तेदारों, मस्कीन और मुसाफिरों से तुम्हें कुतराना हो इस बिना पर कि अभी तुम अल्लाह की रहमत को, जिसके तुम उम्मीदवार हो, तलाश कर रहे हो, यानी तुम्हारे पास इतना नहीं है कि तुम रिश्तेदारों को दो, तो क्या करो, तो तुम उन्हें नरम जवाब दे दो। ना तू अपना हाथ गर्दन से बांध रखो, ये देखिए बांट का खूबसूरत तरीका, ना तो इतने कंजूस हो कि हाथ ही गर्दन से निकल नहीं रहा, जरूरियात पे भी नहीं लगा रहे, और ना इसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि मलामत ज़दा और आजिज बनकर रहो। तेरा रब जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है, वो इन्हें देख रहा है। और इसके साथ ही आप देखिए, पहले माँ बाप की बात हुई, रिश्तेदारों की, अब औलाद के हकूक, अपनी औलाद को अफलास के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम इन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी। दर हकीकत इनका कत्ल एक बड़ी खता है, जिना के करीब न फटको, ये बहुत बुरा फेल है, बहुत बुरा रास्ता। जब से कत्ले औलाद यानी अबॉर्शन के सिलसिले और इसी तरह से फैमिली प्लानिंग के नाम पे ऐसी चीज़ें ईजाद हुई, आप देखिए जिना भी आम हो गया और साथ ही आगे आप देखें कत्ल भी आम है। हर बुराई दूसरी से जुड़ी हुई है। औलाद का कत्ल जैसे दुनिया में आने के बाद नाजायज़ है, इसी तरह पेट के बच्चे को मारना, जिसको अबॉर्शन कहते हैं, वो भी बहुत बड़ा जुर्म है। इंशाल्लाह आपको आज ईमेल में एक भेजेंगे पावर पॉइंट, पिछले सालों में भी दिखाया कि आप उसको ठंडे दिल से देखें, और यकीन करें कमज़ोर दिल के लोग नहीं देख सकते कि किस तरह एक बच्चे को माँ के पेट से कैंचियों से काट काट के गोश्त के लोथड़े निकालते हैं, और कहाँ सॉल्ट पॉइजनिंग के साथ उसको जलाते हैं, फिर वो माँ के जिस्म से निकलता है। ये तो अल्लाह बचा लेता है, वरना माँ भी चली जाए, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, अल्लाह ताला इससे बचा कर रखे। फिर उसके बाद कत्ले नफ्स का इर्तकाब ना करो, जिसे अल्लाह ने हराम किया है मगर हक के साथ, और जो शख्स मजलूमाना तरीके से कत्ल किया गया हो, इसके वली को हमने कसास के मुतालबे का हक अता किया है, बस चाहिए कि वो कत्ल में हद से ना गुजरे, उसकी मदद की जाएगी। माले यतीम के पास ना फटको मगर आसन तरीके से, यहाँ तक कि वो अपने शबाब को पहुँच जाए। अहद की पाबंदी करो, बेशक अहद के बारे में तुमको जवाबदही करनी होगी। पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो, और तोलो तो ठीक ठीक तराजू से तोलो, ये अच्छा तरीका है और इंजाम के लिहाज से यही बेहतर है। किसी ऐसी चीज के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो, क्या कंसुई ना लो, तजस्सुस ना करो, छुप छुप के दरवाजों के बाहर से बातें ना सुनो, हमसायों के घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये ना देखो, किसकी बेटी रूठी हुई है किसका घर बसर है मत देखो, यकीनन आंख कान और दिल सब ही की बाज बुरसोनी है। इन तीन का हिसाब बड़ा सख्त होना है। आप देखिए नामे अमाल की बातें हो रही हैं इस बारे में, सबसे मुश्किल हिसाब आंख कान और दिल का होगा। जमीन में अकड़ कर न चलो, तुम ना जमीन को फाड़ सकते हो और ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। इन उमूर में से हर एक का बुरा पहलू तेरे रब के नजदीक नापसंदीदा है। ये हैं वो हिकमत की बातें जो तेरे रब ने तुझ पर वही की हैं। और देख अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बना बैठ, वरना तो जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। कैसी खूबसूरत बातें हैं, कैसे डाला जाएगा, मलामत ज़दा और हर भलाई से महरूम होकर। कैसी अजीब बात है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटों से नवाजा और खुद अपने लिए मलाइका को बेटियां बना लिया। बड़ी झूठी बात है जो तुम लोग जुबानों से निकालते हो। इस सारे खूबसूरत पैकेज को सुनकर, पढ़कर, ऑफकोर्स हम सब पढ़ रहे थे, मुझे रात की एक बात याद आ गई। जिस मस्जिद में हम थे तो इमाम साहब अपना एक वाक्या सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका किसी फ्रेंच टीवी पे या रेडियो पे इंटरव्यू था, तो वहाँ उन्होंने एक सवाल किया, और जो खबर उनके लिए थी, जिसका खुलासा बता देती हूँ जितनी बात मुझे याद रही, उन्होंने कहा कि जेलों में इस वक्त भी, यहाँ की बात है, मेजॉरिटी मुस्लिम्स की क्यों है। ये बताओ कि इस्लाम अगर अच्छा दीन है तो सबसे ज्यादा मुजरिम मुसलमान क्यों है? और उन्होंने कहा, ड्रग्स की बात हो रही थी, कि किस तरीके से इस वक्त मुस्लिम यूथ ड्रग्स में इन्वॉल्व है, ख्वाहिशों पे रुकते नहीं है, पैसा कम होता है, पैसा ज्यादा लेने के लिए फिर वो ड्रग का काम करते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर किसी को ड्रग वाले को फोन करना है तो सुबह 10 बजे से पहले ना करो, क्योंकि वो सुबह सो रहे होते हैं और बाद में उठते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जुमले जब मीडिया पे आते हैं तो हमारे लिए सर शर्म से झुकाने वाले नहीं होते? कुरान क्या कहता है, इस्लाम क्या सिखाता है? मैं एक एक चीज पढ़ के कह रही थी, क्या खूबसूरत अहकामत है। ये है करेक्टर बिल्डिंग, अगर मेरी आपकी हो जाए, इस आईने में अपने आप को ढाल लें, घर जाएं, इस रुकू को खोलें, पढ़ें, उसमें से एक एक चीज को लिखें, 1 2 3। 10 से ज्यादा चीजें थी, इब्ने अब्बास ने तो इसको 10 में समेटने की कोशिश की, और 1 2 3 करके अपना हिसाब करें, ये है अल्हम्दुलिल्लाह, ये है अल्हम्दुलिल्लाह, ये थोड़ी कमी है, चलो कोशिश करती, उसको पॉइंट दे लें, अब मैंने इस पे काम करना है, ये तो बहुत ही गड़बड़ है, मारी जाऊंगी, चलो इसको इधर लिखो, अब इस पे अपने आप को डांटना है। ये होता है तस्किया, ये होती है तरबियत। तर्जमा पढ़ने से क्या होता है, आप नोट करिए कुरान का मिजाज, जहां इखलाकी बातें होंगी उससे अगली आयत में कुरान की बात है, जैसा कि यहां भी है। हमने इस कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाया कि होश में आए। क्या वाकई आयतें आपको मुझे होश में नहीं लाने वाली? क्या वेकअप कॉल नहीं है मेरे आपके लिए? मगर वो हक से और ही ज्यादा दूर भागे चले जा रहे हैं क्या? नहीं, कुरान ही ना सुनो, इतना गिल्टी कॉन्शियस होता है वहां बैठ के, सुनो ही ना, मैं नहीं सुन सकती, सपारा एक और मुझसे पढ़वा लो, ये एटीट्यूड है मुसलमान का। ए नबी, इनसे कहो अगर अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी होते जैसा कि ये लोग कहते हैं तो वो माल के अर्श के मुकाम को पहुंचने की जरूर कोशिश करते, पाक है वो और बहुत बालाओं पर तर इन बातों से जो ये लोग कह रहे हैं। इसकी पाकी तो सातों आसमान और जमीन और वो सारी चीजें बयान कर रही हैं जो जमीन और आसमान में हैं, कोई चीज ऐसी नहीं जो इसकी हम के साथ इसकी तस्वीर ना कर रही हो। कहिए तस्वीर, आप देख रहे हैं सूरत में सुभान अल्लाह का लफ्ज कितनी दफा आ रहा है, मगर तुम इसकी तस्बीह नहीं समझ सकते। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही बुर्दबार और दरगुजर करने वाला है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी जुबानों को अपने जिक्र से तर कर दे और हम अल्लाह ताला की तस्बीहात बयान करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते, और जितना ज्यादा अल्लाह की तस्बीह करेंगे आप देखेंगे अपनी जात के बुत से हट जाएंगे, इससे दूर होंगे। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे। अफ असफाकुम रब्बुकुम बिल बनीन व तखज मिनल मलाइकति इनासा, कैसी अजीब बात है, तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटों से नवाजा और खुद अपने लिए मलाइका को बेटियां बना लिया, बड़ी झूठी बात है जो तुम जुबानों से निकालते हो। वलकत सर्रफ नफी हाजल कुरआन लियज़्ज़करू, हमने इस कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाया के होश में आए, मगर वो हक से और ज्यादा ही दूर भागे चले जा रहे हैं। ए नबी, इनसे कहो अगर अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी होते जैसा कि ये लोग कहते हैं तो वो तो मालिक अर्श के मुकाम को पहुंचने की जरूर कोशिश करते, पाक है वो और बहुत बालाओं बरतर है इन बातों से जो ये लोग कह रहे हैं। इसकी पाकी तो सातों आसमान और जमीन और वो सारी चीजें बयान कर रही हैं जो आसमानों जमीन में हैं, कोई चीज ऐसी नहीं जो इसकी हम के साथ इसकी तस्बीह ना कर रही हो, मगर तुम इनकी तस्बीह समझ नहीं सकते। हकीकत ये है कि वो बड़ा ही बुर्दबार और दरगुजर करने वाला है। अल्लाह सुबहाना तआला की तस्बीह बयान करने की कोशिश करनी चाहिए। सहाबे कराम कहते हैं कि हम नबी सल्लम के दौर में खाने के लुकमों में से भी तस्बीह की आवाज़ें सुनते थे। ये मौजज़ा था अल्लाह के नबी सल्लम का। आपके मेरे लिए भी ये एक बहुत खूबसूरत तोहफा होगा कि अगर हम अपने दिन को कुछ इस तरह से बांट ले कि सुबह में कौन सी तस्बीह करनी है, शाम में कौन सी करनी है, और आप देखें कि जब पारे का आगाज सुबहान अल्लाह से हुआ है तो फिर इसमें यकीनन कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी, और आप और मैं अगर इस पे अमल करेंगे तो इसी तरह से हमारे साथ वाले, फिर उनके साथ वाले, और एक कल्चर ऐसा बनता जाएगा इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे के बाद कि लोग अपनी और दूसरों की तारीफें करने से ज्यादा अल्लाह ताला की तस्बीह करेंगे। अब यहाँ कुरान का लफ्ज है, और अगर आप ये बात देखें सूरत बनी इसराइल में लफ्ज कुरान बार बार आ रहा है। असल में जो इस सूरत का थीम है कि अरूज और जवाल अचानक नहीं आता, आजिला के तलबगार زوال کی طرف جائیں گے، آخرہ کی طرف آنا ہے تو اس کے لیے قرآن کو لانا پڑے گا. اگلی آیت میں اسی بات کو بڑے پیارے انداز سے بیان کیا گیا.